नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। लोकसभा ने हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। संसद ने असम के गुवाहाटी में आईएम स्थापित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक पारित किया। लोकसभा ने गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए तीन प्रमुख विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजा। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। छत्तीसगढ़ में 29 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अफगानिस्तान के हेरात में शरणार्थियों को ले जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 79 लोगों की मौत। और अनंतजीत सिंह नरुका ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्किट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
मनी गेम्स के कारण ऐसे एक्सट्रीम केसेस कई सारे हुए हैं जिसमें युवाओं ने ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा कमाया, कमाने के बाद में सुसाइड की तरफ आगे बढ़े। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो इसको पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा इश्यू माना है और डिसऑर्डर की तरह से उसको घोषित किया है। तो इस तरह की परिस्थितियों में जरूरी था कि एक ऐसा बिल लाया जाए जो कि समाज के लिए जो उपयोगी है उसको प्रमोट करे, एनकरेज करे, और जो समाज के लिए हानिकारक है उसको रोके।
श्री वैष्णव ने बताया कि विधेयक में 3 खंड हैं, ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स।
ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेमिंग, तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेमिंग। ई स्पोर्ट्स में लोग एक टीम में खेलते हैं और अब ओलंपिक्स और एशियाड जैसे बड़ी प्रतियोगिताओं में भी ई स्पोर्ट्स की चर्चा होने लगी है। दूसरा, ऑनलाइन सोशल गेम्स हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और जिसमें समाज पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसको भी प्रमोट किया जाएगा।
संसद ने असम के गुवाहाटी में आईएम स्थापित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने विधेयक को कल मंजूरी दे दी थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार नए संस्थान बनाने और देश के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में और संशोधन करेगा। श्री प्रधान ने बताया कि पिछले 11 वर्ष में उच्च शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया है।
पिछले 11 साल में देश में 8 पहले हमने बनाए थे आईएम मुंबई तक, आज को मिला के ये नया 9वां आईएम बन जाएगा मोदी जी के कार्यकाल में। पहले 13 आईएम था 53 साल में और 11 साल में 9 आईएम बने, ये एक अपने आप में एक स्टेटमेंट है। 2013-14 में समूचा 13 आईएम में स्टूडेंट्स के नंबर था 3500, आज 24-25 में मैंने इसमें आईएम गुवाहाटी आया ही नहीं, इसमें स्टूडेंट नंबर इज 9800।
लोकसभा ने गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए 3 प्रमुख विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजा है। गृहमंत्री ने आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 130वां संविधान संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक भी पेश किया। श्री शाह ने बिहार में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच ये विधेयक पेश किए।
संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला, इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आए।
कांग्रेस, AIMIM और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने इन विधेयकों को असंवैधानिक और संघीय व्यवस्था विरोधी बताते हुए इनका विरोध किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर बाधित रही। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई स्थगनों के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी में आगामी सुधारों से आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की क्षतिपूर्ति उपकर, स्वास्थ्य और जीवन बीमा तथा कर दरों की तार्किकता पर गठित मंत्री समूह की बैठक में उन्होंने ये बात कही। आगामी जीएसटी सुधारों का उद्देश्य आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और मध्यम लघु तथा सूक्ष्म उद्यमियों को अधिक राहत प्रदान करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सहित एनडीए गठबंधन के कई नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि सीपी राधाकृष्णन एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति साबित होंगे। चुनाव 9 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इसने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किया। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। छत्तीसगढ़ में 10 महिलाओं सहित 29 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन पर लगभग 55 लाख रुपए का इनाम घोषित था। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत समर्पण करने वाले प्रत्येक माओवादी को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। सरकार उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण और कृषि भूमि देगी। सेना ने कुशल सहयोग, एकजुटता और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए असम और मणिपुर के अधिकारियों के साथ ऐतिहासिक सहयोग की पहल की है। एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025 का उद्घाटन आज असम के तिनसुकिया जिले के लाइपुले में किया गया। सेना और नागरिक एकीकरण अभ्यास का उद्देश्य एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण के जरिए क्षेत्र की गंभीर चुनौतियों का समाधान करने के लिए सुरक्षा बलों, सरकारी विभागों और नागरिक संस्थानों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निर्बाध आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए एक निजी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता स्टारलिंक के साथ सहयोग किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि एक वैश्विक उपग्रह इंटरनेट प्रदाता द्वारा आधार प्रमाणीकरण का उपयोग भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की विश्वसनीयता को दर्शाता है। ये सहयोग आधार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए सेवा वितरण में नवाचार को सक्षम बनाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान शुरू हुई यौन हिंसा की प्रवृत्ति जारी है। भारत के स्थायी मिशन के प्रभारी एल्डोस मैथ्यू पुन्नोस ने कहा कि 1971 में पाकिस्तानी सेना ने लगभग 4,00,000 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। ये शर्मनाक रिकॉर्ड है।
The utter impunity with which Pakistan Army perpetrated heinous crimes of gross sexual violence against hundreds of thousands of women in erstwhile East Pakistan in 1971 is a matter of shameful record. This deplorable pattern continues unabated and with impunity to this day. Rampant abduction, trafficking, sexual violence and forced religious conversions of thousands of vulnerable women and girls as weapons of persecution towards religious and ethnic minority communities are reported and chronicled, including in the recent OHCHR reports.
पाकिस्तान की बार बार कश्मीर का उल्लेख करने पर प्रतिक्रिया देते हुए इन्हें से ढोंग बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस के प्रमुख विद्वानों और थिंक टैंक के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने भारत रूस संबंधों, समकालीन विश्व भू राजनीति और भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा की। डॉ जयशंकर आज व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता भी करेंगे। वो मॉस्को में भारत रूस व्यापार मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में शरणार्थियों को ले जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 79 लोगों की मौत हो गई है और 3 अन्य घायल हो गए हैं। राहत अभियान जारी है। इस महीने की शुरुआत में उत्तरी और मध्य अफगानिस्तान में कई बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। डिजिटल B2B मार्केट प्लेस विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन बाजार वेव्स का शुभारंभ आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ। मेलबर्न में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने बताया कि इस पहल से 50 से अधिक भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता एक साथ होंगे। इस दौरान 465 से अधिक बैठकें होंगी। 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक के अनुसार भारत के बुनियादी ढांचागत उत्पादन में इस वर्ष जुलाई में पिछले वर्ष की समान अवधि के तुलना में 2% की वृद्धि हुई है। इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और बिजली सहित भारत के 4 प्रमुख क्षेत्रों में पिछले महीने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इस्पात उत्पादन में 12.8%, सीमेंट उत्पादन में 11.7%, उर्वरक उत्पादन में 2% और बिजली उत्पादन में 0.5% की वृद्धि हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के इस वर्ष जून माह के रिकॉर्ड के अनुसार 21,89,000 सदस्यों को शामिल किया गया है, जो अभी तक की सर्वाधिक संख्या है। आंकड़ों के अनुसार 9.14% की वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से अब तक की ये सर्वाधिक संख्या है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 213 अंक बढ़कर 81,858 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 70 अंक बढ़कर 25,051 पर बंद हुआ। BSE के मिड कैप सूचकांक में 0.4% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की बढ़त दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने कल गुजरात क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि कल सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत तेज वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा होने की संभावना है। 2 से 3 दिन तक महाराष्ट्र और देश के उत्तर पूर्व हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में लगातार 2 दिन भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
बारिश से प्रभावित जिलों में 200 से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। जलभराव के कारण 14 राज्य राजमार्ग समेत लगभग 240 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई है। दक्षिण गुजरात की सबसे बड़ी नदी कहलाती दमनगंगा नदी में भी जलस्तर बढ़ने के कारण नीचे वाले गांवों को सावचेत कर दिया गया है। आज पोरबंदर में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। खराब मौसम के कारण अमरेली के जाफराबाद बंदरगाह पर 3 नंबर का सिग्नल लगाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने देवभूमि द्वारका के लिए रेड अलर्ट और सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात के 10 जिलों के लिए कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
अनंतजीत सिंह नरुका ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में एशिया निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष स्केट स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये उनका पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। सौरभ चौधरी और सुरुचि इंदर सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। हॉकी एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई है। हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे। ये टूर्नामेंट इस महीने की 29 तारीख से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। संसद ने असम के गुवाहाटी में IIM स्थापित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक पारित किया। लोकसभा ने गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए गंभीर आरोपों के लिए गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने के प्रस्ताव संबंधी प्रमुख विधेयकों को आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। छत्तीसगढ़ में 29 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष समर्पण किया। अफगानिस्तान के हेरात में शरणार्थियों को ले जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 79 लोगों की मौत। और अनंतजीत सिंह नरुका ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्किट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।